रामनाथ गोयनका जैसे समाचार पत्र मालिक आजकल की दुनिया में नहीं पाए जाते। प्रेस की आजादी के सबसे बड़े पैरोकार, बहुत बड़े देशभक्त, जाने माने संपादकों और यहां तक कि सरकारों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले रामनाथ गोयनका ने कई टोपियां एक साथ पहन रखी थी। एक खास शख्स में जो विरोधाभास हुआ करते हैं, गोयनका उनकी नुमाइंदगी करते थे। एक अकेले समकालीन शख्स से अगर उनकी तुलना की जा सकती थी तो वो थे उर्दू के महान शायर फिराक गोरखपुरी। तमाम साहित्यिक आलोचकों से घिरे हुए फिराक अचानक अपने चेलों से, बावर्ची खाने से गायब हो गई गाजरों और आलुओं पर उलझ जाते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से रूमानी शायरी और वर्ड्सवर्थ और शैली की कविताओं के बारीक फर्क पर अपना प्रवचन शुरू कर देते थे। उसी तरह रामनाथ गोयनका या RNG अपने सब एडिटर की 100 रुपये तनख्वाह बढ़ाने में हील हुज्जत करते थे, लेकिन दूसरी ओर वही गोयनका फ्रैंक मोरेस और एस मुलगांवकर जैसे अपने पसंदीदा संपादकों को बादशाह की तरह रखने में असीम आनंद का अनुभव भी करते थे। इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास संस्करण के संपादक रहे सईद नकवी याद करते हैं।
दो लोग मुझे जिंदगी में मुझे ऐसे मिले हैं, एक थे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उर्दू के बड़े शायर, और एक रामनाथ गोयनका। दोनों में बहुत चतुराई, बहुत समझ, बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले, और बहुत मासूम, बहुत भोले। तो दो पहलू थे, यानी हर आदमी में कई लेयर्स होती हैं, रामनाथ गोयनका में भी वो थी। एक उनको ये शौक था कि उनके दाएं बाएं लड़कियां खूबसूरत हों, लिहाजा उनके सेक्रेटरी जो थे राघवन, बेचारा अच्छा समझदार, मेरा भी सेक्रेटरी बना बाद में, उसका काम यह था कि जब ये सिनेमा देखने के लिए जाएं तो 6 अदद कोका कोला की बोतल स्ट्रॉ डाल के लाए, क्योंकि 3 इधर बैठी होंगी तो दे मस्ट बी प्लाइड विद कोका कोला। तो ये सब उनके शौक थे। रामनाथ गोयनका से अच्छा दोस्त कोई नहीं और रामनाथ गोयनका से बुरा दुश्मन कोई नहीं। रामनाथ गोयनका की दोस्ती अगर आपको देखनी है तो आप नानाजी देशमुख या RSS के उस जमाने के लोगों से बात कर लीजिए, वो बताएंगे कि रामनाथ जी किसी भी इंतहा तक जा सकते थे नानाजी देशमुख की मदद करने के लिए। और जब वो जनाब पीछे पड़े इंदिरा गांधी के, तो फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि इसको सियासी तौर से बिल्कुल रफा दफा कर देना है।
गोयनका के बारे में मशहूर था कि वो फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ थे। अनावश्यक पैसा खर्च करना वो पाप समझते थे। गोयनका पर किताब लिखने वाली अनन्या गोयनका बताती हैं कि एक बार मुंबई के उनके पेंट हाउस में कई मेहमान आ जाने के कारण उनके दोस्त और जनसत्ता के संपादक प्रभाष जोशी ने मुंबई के ओबरॉय होटल में ठहरने के लिए एक कमरा ले लिया। गोयनका को जैसे ही ये पता चला, उन्होंने उनसे कहा कि वो होटल से तुरंत चेकआउट करें। उन्होंने अपने खुद के कमरे में एक फोल्डिंग पलंग डलवाया और उस पर प्रभाष जोशी को सुलवाया। उनकी कंजूसी के और भी किस्से मशहूर हैं। 8 वर्षों तक उनकी निजी सचिव रही रीनू शर्मा बताती हैं।
वो सवेरे बहुत जल्दी उठते थे, जितनी उनकी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल होती थी इन्होंने 8 बजे से पहले करनी होती थी, क्योंकि उन दिनों 1/4 रेट होता था 8 बजे से पहले। तो इन्होंने अगर सरोज गोयनका को, अम्मा को कॉल करनी है और भी जितने ऑफिसेस में कॉल करनी है, सब 8 बजे से पहले ख़त्म होनी है STD कॉल्स। रोजाना मंदिर जाते थे, हनुमान मंदिर दिल्ली के, परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, कितनी बार मैंने भी करी उनके साथ। रात को जाते थे, 11 कोस की थी आधी परिक्रमा रात को की, अर्ली मॉर्निंग दूसरी परिक्रमा की, वापिस आ गए।
ज्यादा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू के इशारा करने पर उन्होंने उनके दामाद फिरोज गांधी को अपने अखबार में जनरल मैनेजर की नौकरी दी थी।
श्रीमती इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की शादी बहुत ज्यादा कामयाब शादी नहीं थी, दोनों में अक्सर झगड़ा विवाद होता था। एक तो ये, वो ये नहीं चाहती थी कि वो जवाहर, वो प्राइम मिनिस्टर के घर में रहें। एक दिन पंडित जी ने इशारतन गोयनका से कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि फिरोज कहीं कहीं कुछ हो जाए। अब लोगों को ये मालूम नहीं है कि फिरोज गांधी को रामनाथ गोयनका ने जनरल मैनेजर इंडियन एक्सप्रेस का बनाया। जब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंची तो एक दिन इनको बुलाया मथाई साहब ने, जो कि सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू के, और मथाई ने कुछ इशारा ये किया कि उसको न लो नौकरी। अच्छा साहब, इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल करके एक दिन पंडित जी से मिले तो पंडित जी ने इनसे बात नहीं की। अब ये बड़े चक्कर में कि इन पंडित जी नाराज क्यों हैं, मुझे ये किस्सा बता रहे हैं। मैं समझ गया कि ये पंडित जी ने जो मुझसे कहा था वो मैंने किया। ये इंदिरा, इसने ये करवाया था, इसने जाके मथाई के जरिए ये कैंसिल करवा दिया और मेरा रिश्ता जवाहरलाल से। अब मैं कैसे कहूँ कि तुम्हारी बेटी ने करवाया।
सईद नकवी के इंडियन एक्सप्रेस में आने और रामनाथ गोयनका के करीबी बनने की भी एक दिलचस्प कहानी है। मैंने सईद नकवी से पूछा कि आप आरएनजी के संपर्क में पहली बार कैसे आए।
जयप्रकाश जी हम पर बड़े मेहरबान हो गए। 69 में खान अब्दुल गफ्फार खान आए थे, उसमें स्टेट्समैन ने मेरी सर्विसेज दे दी थी एक्सप्रेस अटैची। मैं बहुत ही उम्र में कम था, जेपी के मैं करीब आ गया। यहाँ तक कि जितने भी जेपी के स्टेटमेंट्स हुआ करते थे वो मुझसे क्लियर कराते थे। जब मूवमेंट खड़ा हुआ बिहार मूवमेंट, तो जनाब सारे अखबार वाले होटलों में उस सईद नकवी जयप्रकाश नारायण के साथ। रामनाथ गोयनका चाहते थे कि बिहार मूवमेंट के जितने स्कूप्स हों वो इंडियन एक्सप्रेस में छपें, यहाँ सईद नकवी के जरिए वो सब स्टेट्समैन में छप रहे थे। एक तो ये बहुत उससे नाराज भी हुए और बहुत मुतासिर भी हुए। तो राधा कृष्णन जो कि गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, कहा ये सईद नकवी से मिलवाओ। उसने मुझे बुला लिया एक दिन। मैं जनाब वहां पहुंच गया, देखा तो आप चले आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट में कोई तीन बात नहीं की उसने, लुक हियर आई थिंक यू विल लुक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यू विल लुक आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा अरे भाई जी जी जी, एंड यू विल लुक आफ्टर दैट फेलो, व्हाट इज हिज नेम, अपना वो अपना अटल अपना तो फॉरेन मिनिस्टर। मैंने कहा ठीक है साहब, और वो जो बाबूजी का दफ्तर है वो तो साउथ ब्लॉक हो गया पूरा। मैंने कहा थैंक यू सर। दिल में अपने सोचा कि मुलगांवकर ऐसा पावरफुल एडिटर, उसके बाद कुलदीप नैयर ऐसे एडिटर एक्सप्रेस न्यूज सर्विस, उसके नीचे जनाब अजीत भट्टाचार्य जी रेजिडेंट एडिटर, और इन सब को कानों कान खबर नहीं, आपने जनाब मुझे ये सब। और मैं सन्नाटे में, दूसरे दिन कम इन द मॉर्निंग टू माय ऑफिस, मैं गया, कुलदीप को बुलाया इन्होंने, और ये अंडरवेयर नहीं पहनते थे, लंगोट बांधते थे, तो ये उधर कोने में खड़े हुए अपनी लंगोट बांध रहे थे दीवार की तरफ मुंह किए हुए, पीछे कुलदीप नैयर और मैं। और अब आप अनाउंस करें, कुलदीप आई थिंक वी विल गिव हिम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, आई थिंक वी विल गिव हिम अटल बिहारी वाजपेयी एंड बाबू जगजीवन राम एंड पार्लियामेंट, सो आई थिंक दैट इज ऑल राइट, यू मे गो।
ये तो रही नकवी की नियुक्ति की कहानी, लेकिन कभी आपने सुना है कि एक अखबार का मालिक अपने संवाददाता को अपनी कार में बगल में बैठा कर खुद प्रधानमंत्री से मिलवाने ले जाए?
कि वो फीट चलाते थे अपनी, लेकिन फॉर्मल ओकेजन पे एक बहुत पुरानी स्टूडी बेकर उनके पास थी, उसका अपोजिटरी खादी की थी। हम मुझे बड़ी शर्मिंदगी ये कि मैं वाकई में उम्र में बहुत कम था, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, घबराहट में मैंने साहब एक ऐनक खरीद ली। मैंने कहा ऐनक से कम एक ग्रेविटास तो चेहरे पे आएगी। फिर एक दरवाज़ा, अब देखिए दाखिल हो रहे हैं आप, सामने कोने पे मुरारजी देसाई के बाईं तरफ मुझे याद है जार्स हैं नट्स के, कुछ और जड़ी बूटियों के और तमाम चीज़ें, कोई 25-40 जार्स रखे हुए हैं। मैंने पावर को इतने करीब से अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। अब मैं हक्का बक्का, आप जनाब चारों खाने चित साष्टांग में लेट गए उनके सामने, हाथ उनके पांव के ऊपर, और उसके बाद उठ गया। फौरन उठने के बाद मुरारजी भाई अपने नकवी ही विल लुक आफ्टर द केस, आई थिंक दैट इज फाइन, आई थिंक दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट, यू मे गो। दिस वॉज द एंड ऑफ माई इंटरव्यू विथ मुरारजी देसाई।
रामनाथ गोयनका के करियर का स्वर्णिम क्षण था इमरजेंसी, जब उन्होंने तत्कालीन सरकार के जबरदस्त दबाव के सामने सिर नहीं झुकाया और प्रेस की आजादी के लिए लगातार लड़ते रहे। उनकी जीवनी रामनाथ गोयनका ए लाइफ इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखने वाली अनन्या गोयनका बताती हैं।
न्यूज़पेपर की जो लाइफलाइन होती है वो अपने में तो इतनी प्रॉफिट नहीं बनाती, इसकी जो सर्वाइवल है एडवर्टाइजमेंट के कारण होती है। एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए गए, फिर पेपर ऐसी चीज है कि इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। अगर वो रात को प्रिंट होकर अगर देरी से प्रिंट हो, सुबेरे अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है टाइम पर, तो लोग फिर पढ़ेंगे नहीं, वो बर्बाद चला जाएगा। तो जब मेन प्रिंटिंग टाइम है उस टाइम में अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया जाए पेपर आपके प्रेस का, तो वो पेपर प्रिंट नहीं हो सकता है। उन्होंने वो किया, उन्होंने राणा जी को इंसिस्ट किया कि वो एडिटर को रिमूव करें। सो ही हैड अ ब्लैंक एडिट, आई थिंक द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड न्यूज़पेपर ओनर ने हिम्मत कर एक ब्लैंक एडिट पेपर में डाला था।
इंदिरा गांधी से इतना विरोध होने के बावजूद उन्होंने संजय गांधी की मौत पर न सिर्फ उन्हें एक मार्मिक पत्र लिखा, बल्कि अपने अखबार के पहले पन्ने पर एक संपादकीय भी लिखा।
जब संजय गांधी की डेथ हुई, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ लेटर टू इंदिरा गांधी, और वो लेटर लेके मुझे ही भेजा गया कि तुम देकर आओगी। और वो बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा उन्होंने, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले ही BDG की डेथ हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे सिवाय आपकी पेन को इतना नहीं कोई समझ सकता जिस तरह मैं समझूंगा, क्योंकि अभी ही अभी मैंने अपना बेटा, इकलौता बेटा खोया है। फिर फ़ोन पे भी बात की उनसे। एक बार इंदिरा गांधी ने उन्हें डिनर पे बुलाया, मुझे फ़ोन कॉल आया कि डिनर पे आ सकेंगे, तो मैं गई। मैंने कहा दादाजी आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है कि आपको डिनर पे बुलाया, तूने गलत सुना होगा, बात करो दोबारा, डंकन्स को तो नहीं बुलाया। सो मैंने कॉल किया कि इज़ इट रामनाथ गोयनका ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, वो जी हाँ रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस का ही डिनर के लिए बुलाया है। तो बोले, बड़े खुश हो गए, लगता है अब दोबारा गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है। गए फिर खुशी खुशी आए, मेरे को तो अपनी नेक्स्ट चेयर पे बिठाया, शी वॉज़ वेरी नाइस विद मी। और ये बात मैंने एक से नहीं बहुत से सुनी थी, अगर इंदिरा गांधी किसी डिनर पे बुलाती उसको उनका फेवरेट खाना भी बनवाती थी, क्या है उसको तब भी पता था रामनाथ जी को क्या पसंद है, उनके लिए वही बनाया। वैसे ही
जनता पार्टी मंत्रिमंडल के करीब करीब हर मंत्री उनसे मिलने उनके घर आया करते थे। एक बार उन्होंने मुसीबत में पड़े जगजीवन राम को अपने अखबार के जरिए बचाने की कोशिश भी की थी।
जगजीवन राम का लड़का पकड़ लिया गया कोई सेक्स स्कैंडल में, वो जनाब तस्वीरें आ गई, वो इनके पास पहुंची, आप मेरे पास लेके आए मेरी डेस्क पे, कौन? गोयनका जी। कह लुक हियर, दिस इज गॉट टू बी रबिश्ड। तो मैंने कहा क्या करें, कल के यू कम विद मी। तो बैठ गया साहब उनकी फीट में, वो फीएट में ले के आ मुझे ले गए बाबूजी के पास। दैट वाज द वन इंस्टेंस ऑफ न्यूज मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ एक क्राउड बाबूजी, और बाबूजी बेचारे रो रहे हैं। उसने कहा कि देखिए बिल्कुल झूठ है ये सब, जगजी उसका है, राजनारायण की हुई हरकत है, राजनारायण। और गाली बहुत जल्दी बकते थे, मैं आपके प्रोग्राम में बक नहीं सकता हूँ, बहुत आप पलटे मुझसे, आप कहते हैं आई थिंक वी हैव द स्टोरी, आई थिंक आके साहब बने वो स्टोरी टाइप की। और आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये जो है ये पेज वन पे जाएगी। अब देखिए ये एडिटर्स भी, आप यू आस्क देम टू बेंड, दे बिगिन टू क्रॉल। अब मैं टाइप कर रहा हूँ और मेरे दाईं तरफ कभी कुलदीप ने रख, तो ठीक चल रहा है ना, उधर से फिर अजीत भट्टाचार्य जी हमें कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन ना, यानी ये कि ये ना हो कि कहीं मैं इधर उधर कर दूँ। इस तरह से इंडियन पॉलिटिक्स टेक्स अ नोज डाइव, ये था पेज वन के ऊपर कहानी गई, जो कि बिल्कुल मैं आज कसमियाँ कसम खा के बताता हूँ बिल्कुल झूठी कहानी थी, मैंने लिखी थी, रामनाथ जी ने लिखवाई थी।
गोयनका के साथ फ्रैंक मोरेस, निहाल सिंह, कुलदीप नैयर जैसे कई संपादकों ने काम किया, लेकिन उनके फेवरेट थे एस मुलगांवकर। वो उनके अंग्रेजी ज्ञान और उठने बैठने के तरीके के मुरीद थे और उनके साथ ब्रिज भी खेला करते थे।
मुलगांवकर जी बहुत ज्यादा क्लोज थे रामनाथ जी के। वो जब बॉम्बे आते थे तो पेंट हाउस में जब रहते थे, ही वाज द ओनली पर्सन जिसके लिए पेंट हाउस में फिश आता था। यहाँ पे नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं, इट वाज ऑल वेजिटेरियन फूड। पर जब मुलगांवकर जी बॉम्बे आते थे, उनको बहुत शौक था नॉनवेज का, बेसिकली फिश का, सी फूड का, तो उनके लिए यहाँ पे जरूर फिश आता था।
गोयनका में कोई ना कोई बात ऐसी थी जिसकी वजह से भारत की सर्वश्रेष्ठ पत्रकार प्रतिभाएं उनके अखबार की तरफ खींची चली आती थी। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में उस समय सबसे कम तनख्वाह दी जाती थी। सईद नकवी याद करते हैं,
मैंने आइडियाज उनको जो दिए बहुत पसंद आए, कह लगे नकवी और जीनियस। तो मैंने कहा तो फायदा, लुक हियर मैं तुझे आज एडिटर बना दूँ अगर तू मुसलमान नहीं हो गए तो। तो मैंने कहा रामनाथ जी मैं मुसलमान तो, मैं हिंदू तो आज हो जाऊँ, लेकिन मुझे आपको आयंगार बनाना पड़ेगा, उससे कम नहीं मानूंगा। कह लगे देखो सांप जो होल में जावे तो सीधा हो जावे, तू वहां भी नहीं सीधा होवे। अगर आपको अंदाजा है कि वो क्या चाहते हैं तो आप अपना नेविगेट कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था और बल्कि बड़ी इज्जत करता था अगर आपसे उससे हटके आप कोई नई खबर लेके आए।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।